ہمارے پروگرام گپ شپ ود طاہر میں میں ایک سیریز جو کر رہا ہوں آج کل وہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج اور اس کے ہونے والے افیکٹس جو ہیں وہ کیا ہیں اور ایکچولی ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے اب کہ ان کی زندگی میں وہ مشکلات نہ ہوں کہ جو کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو سکتی ہیں یا اس کے مطابق ان کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو اس سلسلے میں میں پہلے بھی دو پروگرام کر چکا ہوں, ایک جنرل کلائمیٹ چینج کے اوپر اور ایک کیمیکلز اینڈ ہاؤ بیسکلی دے ایڈ اپ ٹو دا کلائمیٹ چینج ایشو جو بھی ہمیں ہے. اسی سلسلے میں آج کا جو میرا تیسرا پروگرام ہے اس میں آج ہم بات کریں گے ویسٹ مینجمنٹ اور کلائمیٹ گلوبل کلائمیٹ چینج کے بارے میں کہ ان دونوں کا ریلیشن شپ کیا ہے اور وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں ایز کمیونٹی کرنی چاہیے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھا پلانٹ چھوڑنے کے لیے ایک اچھی انوائرمنٹ چھوڑنے کے لیے. آئیے سنتے ہیں آج کا پروگرام کلائمیٹ چینج ویسٹ مینجمنٹ اینڈ آور رول.
We have the best listeners at radiocontactpakistan.com.
On MT.
نے ان کو سب دیا ہے تو تھوڑا سا اس کو بھی دینے کوئی فرق نہیں پڑے گا.
تمام ٹیکنالوجی سکھائیں گے
یار بارے
جی. اسی طرح اگر ہم اس کو تھوڑا براڈر پیک میں دیکھیں تو دیکھیں
گپ شپ وِد ٹی این ٹی.
السلام علیکم سامعین, ریڈیو کانٹر پاکستان سے آپ کا پسندیدہ شو گپ شپ وِد طاہر لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے. سامعین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی کچھ اقساط میں ایپیسوڈز میں اپنے پروگرام کی میں نے جو ایک ٹاپک ڈسکس کیا ہے اور جس ٹاپک کو میں نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج, جو ویدر اور جو انوائرمنٹ ہماری چینج ہو رہی ہے پلانٹ کی وہ کیا ہے, کیوں ہے اور کیا ہو سکتا ہے, یعنی اس کے اثرات ہمارے پہ اچھے ہوں گے برے ہوں گے, اس کے بارے میں میں ڈسکس کر چکا ہوں. اور یہ ثابت ہوا کہ ڈیفینیٹلی کلائمیٹ چینج از برنگنگ اے لاٹ آف ایشوز جو کہ آج اگر ہمارے سامنے نہیں ہے سامعین تو یہ ایشو جو ہیں ہماری آنے والی نسلوں کے سامنے ہوں گے اور ہم جواب دے ہوں گے کہ ہم نے اپنی انوائرمنٹ کا اپنی کلائمیٹ کا دھیان کیوں نہیں رکھا. ہمارے بچوں کے بچے یا پرہیپس ہمارے اپنے بچے جو ہیں وہ کلائمیٹ کی اس ڈریسٹک چینج کو دیکھیں گے, وٹنس کریں گے کہ جو پرہیپس ارریورسیبل ہو چکی ہے. وی ہیو ریچڈ ٹو دا پوائنٹ آف نو ریٹرن پرہیپس, ہم نہیں جانتے, لیکن اس کو ڈسکس اس لیے کرتے ہیں سامعین تاکہ ہماری کمیونٹی تک ہر وہ چیز پہنچ سکے, وہ نالج پہنچ سکے کہ جس سے وہ اپنے لائف سٹائل میں وہ چینجز لا سکیں کہ جن کی بہت ضرورت ہے ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ میں نے ایک ایپیسوڈ کی وہ تھی جنرل کلائمیٹ چینج کے اوپر, اس کے بعد جو دوسرا ٹاپک میں نے ایڈریس کیا وہ تھا کیمیکلز کا کہ کیمیکلز کس طرح سے ہماری کلائمیٹ کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں اور ان کا جو یوزج ہے ہمارے گھروں میں ڈومیسٹک ہاؤس ہولڈ کے اندر اس سے کیا چینجز آ رہی ہیں ہماری انوائرمنٹ میں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی انوائرمنٹ کو بہتر کر سکیں اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے. اسی سلسلے میں آج کا جو میرا پروگرام ہے سامعین وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ مسئلے کو جو ہے ایک ہماری زندگی کے ایسے ایسپیکٹ کو ہم ہائی لائٹ کریں گے کہ جو ڈیفینیٹلی جس کا جو رول ہے وہ کلائمیٹ چینج کے اندر اگر بہت کم نہیں ہے اور اگر بہت زیادہ نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی اٹ از میکنگ اے ڈفرینس, یہ امپیکٹ کر رہا ہے ہماری کلائمیٹ کو. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آور ویسٹ, ہم لوگ جو فضلہ 24 گھنٹے میں پروڈیوس کرتے ہیں ان فارم آف لاٹس آف تھنگس, ان فارم آف ان فیکٹ اگر ہم بات کریں تو پلاسٹک کے جو بیگز ہیں ہمارے گھروں میں شاپر بیگز جن کو ہم بولتے ہیں ان سے ہم اپنی کلائمیٹ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیا کیا مسائل پیدا کر رہے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ویسٹ مینجمنٹ اینڈ آور رول, یعنی آپ کا اور میرا رول کہ ہمیں اپنی انوائرمنٹ کے لیے کیا کرنا چاہیے تاکہ آنے والا ہر دن جو ہے آج کے دن سے ہمارے لیے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہو. سامعین کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. I'll take a short break and we'll be back and talk to an expert جو کہ اس एरिया में, जगता है पाकिस्तान में, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
You're listening to Gup Shop. Gup Shop.
With TNT. Retelling of information heard on this program
without the express written consent of RadioContactPakistan.com is probably okay.
Remember, together we can make a difference at RadioContactPakistan.com.
Welcome back, Sameen. Ji janab. आज के हमारे मेहमान बहुत खसूसी मेहमान, जो कि बात करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में और कम्युनिटी के रोल के बारे में कि कम्युनिटी को क्या करना चाहिए। इससे पहले कि हम अपने तमाम वो जो सवाल हम जानना चाहेंगे मुख्तलिफ किस्म की वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट के बारे में कि कौन सी वेस्ट डोमेस्टिक होती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होती है, इन चीज़ों से हमारे क्लाइमेट पर फ़र्क क्या पड़ रहा है, और फिर हम आएंगे अपने उस प्रोग्राम के उस हिस्से में जिसमें हम उनसे पूछेंगे कि हमें अब क्या करना चाहिए अपनी क्लाइमेट को चेंज करने के लिए। बीइंग एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज सपोज्ड टू बी माय रोल, व्हाट आई शुड बी डूइंग एंड व्हाट आई शुडन्ट बी डूइंग। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं, आपको उनसे तारुफ करवाते हैं जनाब, वो हैं एक सिल्वर मेडलिस्ट इंजीनियर मकबूल हुसैन, पाकिस्तान से हमारे साथ ऑनलाइन है। अस्सलाम वालेकुम मकबूल भाई।
वालेकुम सलाम
मकबूल भाई, क्या हाल चाल है जनाब आपके?
अल्लाह की मेहरबानी
जी। जनाब पहले तो हमें ये बताइए कि आप पाकिस्तान के किस खूबसूरत शहर से हमारे साथ बात कर रहे हैं?
मैं इस वक्त खानेवाल से हूँ
जी। खानेवाल
भाई गांव साथ है खानेवाल से, कोई 14-15 किलोमीटर के फासले पर मशरक साइड में
जी। हमें थोड़ा सा खानेवाल के बारे में बताइएगा, अपने आबाई शहर के बारे में, इस खूबसूरत पाकिस्तान के बारे में बताइएगा। खानेवाल का की तारीखी हैसियत अगर आप जानते हो तो थोड़ी सी हमें बताइए।
ये खानेवाल जो शहर है, ये एक मंडी के तौर पर मशहूर था, जहाँ इलाके के तमाम मवेशी लाए जाते थे और यहाँ से इसकी तजारत होती थी। पाकिस्तान बनने से पहले ही मौजूद था
जी।
बाद में ये तहसील बना, सब तहसील बना और फिर डिस्ट्रिक्ट बना 1987 में
जी। जी अच्छा, ये तो बताइए हमें मकबूल भाई अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें।
हम यहाँ की मशहूर लोकल फैमिली राजपूत सहू से ताल्लुक रखता हूँ मैं, और ये भी फैमिली माइग्रेट करके नहीं आई थी, बल्कि लोकल है, दे आर एबोरिजिनल फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम दिस सॉइल
जी, पंजाब से।
तो पंजाब से और इसी जगह से जहाँ पर हम मौजूद हैं इस वक्त रह रहे हैं, उसकी उस जगह का नाम है शेख मलका
जी।
दरबार आलिया हजरत बाबा शेख मलका की प्लेस है, जो वर्ल्ड रिनाउंड पेशवा थे, जिन्होंने तबलीग की, हमारे जो बवाजदाद थे उन्होंने मुसलमानियत को इंडो पाक में फैलाया और अपनी कोशिशें की, और हम शुरू से इधर ही हैं। कुछ 500-600 साल से हम शेख मलका में रिहायश कर दी
जी। जी तो आप तो यूं कहना चाहिए कि जद्दी पुश्ती पाकिस्तानी है माशाल्लाह। अच्छा सर मकबूल भाई, हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, लेकिन उसके जाने से पहले हमें थोड़ा सा अपनी प्रोफेशनल बैकग्राउंड बताइएगा कि आप क्या क्या अपनी जिंदगी में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आपने किया है।
मैं बुनियादी तौर पर एग्रेरियन फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, और मेरी पहली डिग्री जो है वो है BSc एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग
जी।
उसके बाद मैंने 10 साल पाकिस्तान में काम किया, और वो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ही है सारा, एग्रीकल्चर सॉलिड वेस्ट
जी।
उसके बाद 2000 में मैं मलेशिया चला गया था, वहाँ पर यूनाइटेड नेशन के साथ काम किया, वहाँ पर यूनिवर्सिटी पुत्रा मलेशिया के साथ मैं मुंसलिक रहा ज़्यादा टाइम, 2006 तक। वहाँ से मैंने मास्टर किया PhD के लिए, और वहाँ पर रिसर्च मुकम्मल की, सिल्वर मेडल लिया डॉक्टर महातिर साहब से
माशाल्लाह,
और उसमें वहाँ मैंने सॉलिड वेस्ट में काफ़ी काम किया मलेशिया में, खासतौर पर आइलैंड्स, मीन जो उनके छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनके ऊपर वेस्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम इस्टेब्लिश करना है वो कदरे मुश्किल है, क्योंकि दरमियान में रोड्स नहीं होते हैं बल्कि हिल्स होती हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, तो वो सारा उसका कम्युनिकेशन जो है वो पानी के ज़रिए होता है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो सॉलिड वेस्ट की है वो प्रॉब्लम होता है। उसका वहाँ हमने ये इंतजाम किया है ताकि जहाँ पैदा की जाती है उधर ही प्रोसेस,
सही सही। तो मैं ये समझता हूँ जी जी,
मैं वापस आ गया हूँ
जी,
2009 में मैं वापस आ गया हूँ। आकर मैं ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मुंसलिक हो गया एक प्राइवेट कंपनी के साथ, जिसमें एनवायरमेंटल सर्वेज कंडक्ट किए, खासतौर पर NWFP में पिशावर सिटी का सारा वेस्ट सर्वे मैंने किया,
एनवायरमेंटल
इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो मैंने सारा किया।
Good.
उसके बाद एक फिश फार्म एस्टेब्लिश किया।
अच्छा।
और अभी सलीगा वेस्ट टेक्नोलॉजीज के नाम पे एक कंपनी हमने लॉन्च की है, जिसका मैं फाउंडिंग चेयरमैन भी हूँ, MD भी हूँ
जी। माशाल्लाह, आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर कैरियर मकबूल भाई। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। मुझे ये बताइए कि इन सिंपल वर्ड्स, इजी टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल, व्हाट इज वेस्ट मैनेजमेंट? वेस्ट मैनेजमेंट है क्या? और पहली बात है कि वेस्ट को आप कैसे डिफाइन कीजिएगा?
देखिए, वेस्ट हमारी तीन किस्म की है मेन। तो एक है सॉलिड, जिसको हम, जिसका कोई हुजम है, जिसको हम हाथ से उठा सकते हैं, उसको हम सॉलिड वेस्ट कहते हैं। जैसे कूड़ा क्रिकेट है, हमारे घरों में से निकलते हैं, या स्मॉल इंडस्ट्रीज जो शहरों के अंदर होती हैं उनमें से वो वेस्ट या वो कूड़ा क्रिकेट जिसको हम अपने हाथ से बगैर किसी कंटेनर में डाले हुए हम उसे पिक कर सकते हैं, उसका कोई हुजम है, वो सॉलिड वेस्ट।
अच्छा, ये सॉलिड वेस्ट हो गया।
उसमें से जो उसमें से माया चीजें निकलती हैं, अफ्लुएंट्स निकलते हैं, हम उनको जाना लिक्विड या अफ्लुएंट वेस्ट का।
सही। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा
था जो उसके अंदर, सॉरी
जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब आप वेस्ट की बात करते हैं, एक तो सॉलिड हो गए और दूसरे क्या बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा था कि सॉलिड वेस्ट के अंदर भी एक तो वेस्ट वो होता होगा जो कोई डोमेस्टिक जो हाउस होल्ड है वो प्रोड्यूस करता है, और फिर सॉलिड वेस्ट में पॉसिबली इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व होती है, उनका भी सॉलिड वेस्ट होता है।
ऑफ कोर्स, हमारे मुल्क में जो है टाउन प्लानिंग इस तरह की हुई है कि शुरू से हमारे इंडस्ट्रीज के लिए अलग एरियाज एलोकेट नहीं किए गए, इसलिए जो स्मॉल या कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो अब भी शहर के अंदर से ऑपरेट हो रही हैं, और उनका जो हैज़र्डस वेस्ट है, जो मुजर सेहत खास तौर पर है, जिसे हम हैज़र्डस वेस्ट कहते हैं, वो भी इस हमारी वेस्ट टीम का हिस्सा बन गया।
अच्छा, और ये मुझे बताइएगा कि ये जो वेस्ट है इसको मैनेज अप कैसे किया जाता है? मतलब ये जो सॉलिड वेस्ट है इसको अभी हम पाकिस्तान में किस तरह से इसको मैनेज करते हैं?
सिंपल तो ये है कि अभी तक हमारा, मैं आपको बुनियादी तौर पर बताऊं कि अभी आकर गवर्नमेंट ने ड्यू टू द रीजन ऑफ यूनाइटेड नेशन प्रोटोकॉल, अभी आकर हमारी हुकूमत ने खास तौर पर बड़े शहरों में अपनी एक्टिविटीज शुरू की हैं, लेकिन फिक्र वाली बात ये है कि अभी तक इवन ना हमारा जो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है, प्रोविंशियल शहर है लाहौर, उसके अंदर भी 100% वेस्ट कलेक्शन ही नहीं हो रही है।
अच्छा, यानी पहली बात इसमें जो आती है, जी जी, इसमें जो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से, वो ये आती है कि वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, वेस्ट उसके बाद जो है उसको ट्रांसपोर्ट होना है और फिर उसको मैनेज होना है।
हाँ, पहले कलेक्शन होने हैं।
जी, जो कलेक्शन का पार्ट है वो आप समझते हैं कि शहरी इलाकों में अभी तक इतना ज्यादा, और देहाती ऑफ कोर्स, इतना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ हुआ, तो वेस्ट की जो है वो कलेक्शन नहीं हो पा रही।
हाँ जी।
अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि अगर वेस्ट की कलेक्शन नहीं होती तो उस वेस्ट की वजह से हमें क्या नुकसान आता है?
उसका सिनारियो आप इस तरीके से देख लेते हैं कि जो आपके दो चार घरों के बाद जो खाली जगह है, कोई कोना है, वहीं पर जो है ना हर एक आदमी, बल्कि लोग मोस्टली जो है वो गलियों में नालियों में फेंक देते हैं, तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले तो ये कि आप अपना जो है ना सारा वो ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक कर देते हैं, नंबर वन। फिजिकल लॉस जो है, जो इसमें हैजर्ड है, वो ये है कि आप जो है ना नालियों का पानी, मीन आपने चैनल्स का जो वाटर फ्लो है, वेस्ट वाटर है, वो रोक दिया। नंबर टू, वो जो वेस्ट वाटर है उसके साथ जो अलैशे हैं, ये हमारी जो कूड़ा क्रिकेट की हैं, वो उसके अंदर डिजॉल्व होकर तो वाटर के साथ चली गई और शहर के बाहर या शहर के अंदर ही, इवन जहाँ नालियाँ होती हैं, सारी पक्की नालियाँ नहीं होती हैं, और वो पानी ज़मीन के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीप डाउन होता 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 ग्राउंड वाटर से जा मिलता है।
अच्छा।
जब ग्राउंड वाटर से जाकर मिलता है तो ये सारे जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको दोबारा हम देना रिपंप करके पी रहे हैं।
Oh my God. तो जो यहाँ पे कहने की बात है सामीन वो ये है कि आपने इलाके के हमेशा ड्रेनेज सिस्टम को देखिए कि आपकी जो नाली है वो ब्लॉक ना हो, और एक्चुअली ये जो ब्लॉक होती है ज्यादातर हमारे ये प्लास्टिक के लफाफे फेंकने से या सॉलिड वेस्ट कोई भी पत्थर कंकर इस तरह की चीजें फेंकने से या यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बैटरीज वगैरह फेंकने से आप उसको ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक करने से क्या होता है कि जो आपकी ड्रेनेज पाइप्स हैं उनमें से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लीक होता हुआ जो ग्राउंड में आपका साफ पानी है जो आप पीते हैं उसके अंदर मिक्स होना शुरू हो जाता है। तो पहला जो इशू है वो ये है इस कलेक्शन के हवाले से कि अगर आप अपने गार्बेज को अपने वेस्ट को कलेक्ट नहीं करते हैं यानी जहां पे वो प्रोड्यूस हुआ वहां से उठा करके जो दूसरा पार्ट है कि जहां पे उसको स्टोर होना है जो हमें मकबूल भाई बताएंगे कि इसकी आगे जाकर के मैनेजमेंट कैसे होती है उसके तक पहुंचने से पहले ही अगर आप ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं अपनी अपनी जो आपके यहां से ड्रेनेज हो रही है तो उसका एक तो नुकसान ये हो गया। तो उसके लिए बेहतर यही है आप सामीन हम सब के लिए कि हम कलेक्शन के कोई अरेंजमेंट्स करें और अगर हमारे पास नहीं है तो हम जो हमारी वहाँ की कॉरपोरेशन है बल्दिया है हमारी जो उनसी वहाँ जाके रिक्वेस्ट करें। उसके बारे में भी मेरे ख्याल में मकबूल भाई हमें बता सकेंगे कि किन लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए। मकबूल भाई ये बताइए कि अगर कहीं पे अगर लोग तो ये कहेंगे ना कम्युनिटी तो ये कहेगी कि भाई जी हम इसलिए यहाँ पे डंप कर रहे हैं कि यहाँ से कोई उठाने नहीं आता हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है तो वो कौन से इदारे हैं हमारी हुकूमत के जिनको जिनके फ्राइज में ये शामिल है कि वो वेस्ट को कलेक्ट करेंगे।
ये बिल्कुल है तो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज हैं छोटे शहरों में जाना जिसे हम कमेटीज कहते हैं
जी
वही हैं वही जिम्मेदार हैं लेकिन उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी ना होने की वजह से मैंने आपको पहले भी आज किया कि किसी भी शहर में इवन बड़े शहर में 100% कलेक्शन नहीं हो रही।
सही। और
मैं आपको इसका लाइफ साइकिल समझाने की कोशिश करता हूँ
जी बताइए
कि घर में जाना हमने जो भी कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ है और आपको बताता चलूं कि जो डोमेस्टिक वेस्ट है वो सिर्फ ये नहीं है कि उससे कोई नुकसान नहीं होता उसके अंदर हैजर्डस वेस्ट भी शामिल है मसलन बैटरीज हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए आपके जाना जो डिटर्जेंट्स है वो हो गए आपके केमिकल्स हो गए मसलन मॉस्किटोज या दूसरी मक्खी मार दवाइयाँ जो है वो हो गया टूथपेस्ट हो गया साबुन हो गए ये जो बाथरूम केमिकल्स है वो भी इस वेस्ट का हिस्सा है
जी।
और ये एक जो है ना अलमिया है कि अभी तक हमने इसके लिए कोई प्रोटोकॉल कोई गाइडलाइंस कोई हमने लेजिस्लेशन नहीं की है पाकिस्तान में इफेक्टिव तरीके से के आया हमें जो है ना फूड वेस्ट के अलावा और प्लास्टिक और मेटल्स के अलावा जो केमिकल्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हैं वो हमें अलहदा उसे डिस्पोज ऑफ करना चाहिए उसका अभी तक कंसेप्ट ही नहीं है हम अभी तक बिल्कुल बुनियादी लेवल पर हैं।
लेकिन इसके लिए कोई यूएनओ की कोई इसके लिए गाइडलाइंस नहीं है कि जो एवरी कंट्री हैज टू इम्प्लीमेंट
बिल्कुल उनके काफी डिटेल जो है ना गाइडलाइंस हैं प्रोटोकॉल्स हैं और उसके लिए वो सारे मुल्कों को पुश करते रहते हैं वो सारे मुल्कों को जो है ना ये टाइम टू टाइम दे नोटिफाई एंड देन दे स्टार्ट सम प्रोजेक्ट्स टू बिल्ड देयर कैपेसिटी
जी।
तो उसमें हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक बहरहाल इनिशिएटिव लिए हैं खासतौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ खासतौर पर इसमें जाना वो पेन रखते हैं और वो इसके ऊपर काफी कोशिश कर रहे हैं।
ठीक अच्छा ये तो एक पार्ट हो गया तो आप उसका मुझे लाइफ साइकिल बता रहे थे तो कलेक्शन के बाद क्या हुआ।
हाँ अभी थोड़ा सा आप यहाँ साइकोलॉजिकली हमारी जो है ना डेली लाइफ से इसका बड़ा ताल्लुक है
जी
मसलन जाती तौर पर आप सुबह उठते हैं आप सबसे पहले जो है वॉशरूम में जाते हैं
जी
आप वहां पर जो है वो अपनी हाजत पूरी करते हैं और उसके बाद सबसे पहले अपने आप को अपने हाथों से धोते हैं
जी
दिस इज अ बेसिक थिंग। उसके बाद जनाब सारे लोग उठते हैं और फिर नाश्ता पकते हैं नाश्ते से जो वेस्ट होती है जो बचा कुचा चीजें होती हैं ये सब्जी या वेजिटेबल्स या रोटी के टुकड़े वो सारे जो बचे दैट इज अ वेस्ट
जी
तो वो सारी वेस्ट कलेक्ट होके तो उसको तो हम सारा इकट्ठा करके और घर की सारी सफाई करके तो निकाल के किसी एक डब्बे में रख देते हैं
जी
डस्टबिन में ठीक है ना जी हमने अपना घर साफ कर लिया है बट वी आर लीस्ट बदर अबाउट आउटसाइड ऑफ आवर डोर
सही
तो वहां से मोस्टली लोग ये करते हैं कि उनकी जो टेंडेंसी है ये अब एक हमारी कौम का एक नेशनल जो है ना वो एक एटीट्यूड बन गया हुआ है कि जो मसाइल है अपने गले से निकाल के दूसरे के ऊपर डाल दो तो वो अब गली में फेंक देंगे, मोस्टली लोग गली में फेंक देते हैं।
सही तो हाँ तो ये
कुछ ऐसी जगह है
जी बिल्कुल बिल्कुल
ऐसी जगह है जहाँ पर लोग कुछ पढ़े लिखे हैं या लोग वहाँ इस तरह के रहते हैं कि सोसाइटी कुछ एस्टेब्लिश है तो वहाँ पर जो है ना कोई सिस्टम होगा, अगर वहाँ कमेटी अगर कलेक्ट नहीं करती है तो उन्होंने अपने बंदे रखे हुए हैं जो डोर टू डोर जाकर कलेक्ट करते हैं और वो उनको मंथली पे करते हैं।
सही तो इससे जो बात साबित होती है, इससे जो बात साबित होती है मुगुल भाई वो ये है कि हमारे यहाँ नॉलेज और अवेयरनेस का फुकदान है। हमारी जो कम्युनिटीज हैं उसके अंदर ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि अपने कारपेट पे से झाड़ू फेर करके उसको कारपेट के नीचे डालने से गंदगी जो है वो छुपती नहीं है, बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो आप ही के लिए नुकसान का बायस बन रही होती है। तो मैं तो सामिन से यही कहूंगा कि बेसिकली हमारे तो मजहब में भी जो है वो सफाई निस्फुल ईमान है। तो सफाई का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप कारपेट को साफ कीजिए और कारपेट के नीचे गंद फेंक दीजिए, नहीं बिल्कुल नहीं, उसको प्रॉपर तरीके से कलेक्ट होना चाहिए। कलेक्ट होने के बाद वो उसके उसके साथ क्या होता है वो हमें पॉसिबली आप मकबूल भाई बताएंगे। मकबूल भाई ये बताइए कि वेस्ट कलेक्ट हो गया और कलेक्ट होने के बाद फिर उसको मैनेज आप कैसे करते हैं हम लोग, दुनिया में क्या दुनिया में क्या होता है हमें ये जरूर बताइएगा कि दुनिया में इन जनरल क्या होता है, जो एडवांस कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, मईशत स्ट्रांग है उनकी, उनके यहाँ इसकी जो है मैनेजमेंट कैसे होती है और हमारे यहाँ कैसे होती है ये बताइएगा हमें।
इसमें बेसिक तरीके से तो ये होती है, जो आम फैम जनरल रूल ऑफ थंब है वो ये है कि हर कोई अपने घर में इकट्ठा करके तो एक प्लास्टिक बैग में डाल देता है और वो घर के बाहर उनके तो खासतौर पर मलेशिया की सूरत हाल बताता हूँ कि वहाँ उन्होंने गेट के ऊपर ही जो है ना एक बॉक्स लगाया है
जी।
तो वो प्लास्टिक वाला बैग जो है वो उसके अंदर रख देते हैं, उनका टाइम होता है उस एरिए का शेड्यूल मीन रूटिंग सिस्टम बना हुआ होता है कलेक्शन व्हीकल्स का, वो आते हैं और वो उठाकर अंदर अपने गाड़ी में डाल देते हैं कार्ट में। ये दिस इज अ सिंपल वे, ये है मिनिमम जनरल वेस्ट कलेक्शन सिस्टम एंड डिस्पोजल सिस्टम आउट ऑफ द हाउस।
ठीक।
और डेवलप कंट्रीज हैं लाइक जर्मनी है, जर्मनी में अभी उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं वेस्ट डिस्पोजल के डोमेस्टिक पे या जहां पे वेस्ट पैदा होती है, उन लोगों ने आज से 50-60 साल पहले इस काम शुरू किया था। जर्मनी इज द ओनली कंट्री के जहां अभी 100% वेस्ट सेपरेशन होती है अपने किचन में और उनकी गवर्नमेंट ने उनको लेजिस्लेट किया हुआ है और उसके ऊपर एनफोर्समेंट की हुई है कि आप वेट यानी ऑर्गेनिक मटेरियल जो है जो गीला है उसको आप एक बैग में डालेंगे, जो प्लास्टिक्स है जो रिसाइकलेबल है या नॉन रिसाइकलेबल है उसमें शीशा भी आ जाता है उसमें मेटल्स भी आ जाते हैं वो दूसरे हिस्से में जाएंगे, तीसरे हिस्से में इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स जाएंगे, केमिकल्स जाएंगे, हैज़र्डस वेस्ट जाएगी, ये तीन किस्म के प्लास्टिक बैग जो है वहां रह जाए उनके मुख्तलिफ कलर्स।
सही तो ये तो मकबूल भाई हम लोग इनको एज अ बेस लाइन डेवलप कंट्रीज में ले लेते हैं और आते हैं कि अब हमारे यहाँ ये बताइए कि हमारे यहाँ क्या प्रैक्टिस है, किस तरह से हम वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं।
हमारे यहाँ अगर कलेक्शन किसी जगह पर हो भी रही है तो वो प्रॉपर जगह पे सेंट्रलाइज जगह पे नहीं जा रही है या इवन डिसेंट्रलाइज फैसिलिटी कोई नहीं है कोई एस्टेब्लिश, मोस्टली हमारे जिले लेवल पर डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे कुछ होगी लेकिन वहां पर भी जो है ना हमारे इवन लाहौर में अभी तक महमूद बूटी के ऊपर सारा डंप किया जाता है और कलेक्शन भी 100% नहीं है, वहां जाकर वो डाल देते हैं। और अगेन जो सिनारियो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम घर से बाहर डिस्पोज करके खाली जगह पे फेंक देते हैं और वो गीला भी होता है फिर बारिश भी आती है या मौसमी हालात इस तरह के होते हैं वो जो पानी होता है जो के साथ इन कॉन्टेक्ट होता है तो वो जमीन के अंदर रिस के सीप होके तो ग्राउंड वाटर में चला जाता है या उसकी एवेपोरेशन होती है या हमारी जो सरफेस फ्लडिंग होती है मसलन बारिश होती है तो वो मुख्तलिफ जगह पे पहुंच जाता है और वो हमारी जमीन को खराब करता है। ये एक चीज होगी
जी।
अब अगर दूसरा सिनारियो ले लेते हैं कि जी कलेक्शन हुई है, जहां से कलेक्शन हुई है वहां से गाड़ियां लेकर तो शहर के बाहर जाकर ओपन डंप सिस्टम जो है ना हमारे मुल्क में अभी तक राइज है
जी,
ठीक है ना, तो वो जाकर वहां बैर फेंक देते हैं और उसका अभी तक वही प्रॉब्लम है कि अभी हमारी गवर्नमेंट मुख्तलिफ प्रोविंशियल और सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो है वो इस चीज का जो है ना कोई इंतजाम कर रही है। लेकिन अगेन इसमें प्रॉब्लम आता है कि इस फील्ड में वेस्ट मैनेजमेंट ये बहुत आम फैम सी चीज है, कूड़ा क्रिकेट जो है ना अजलों से पुराने शहरों से इसके बारे में लोग जानते हैं कर रहे हैं, लेकिन सेंट्रलाइज प्लेस पे जब पहुंच जाता है वहाँ अभी हमारे पास जो है ना वी हैव नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज कि हमने किस अप्रोच को फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू अवर सोशियो इकोनॉमिक्स लेवल।
अच्छा तो वो कौन सी ना? वो कौन सी हैं वेस्ट मैनेजमेंट की वेरियस काइंड्स ऐसी मुख्तलिफ किस्में के जो पहले से साइंटिफिकली प्रूवन है, जरा उनके बारे में बताइएगा। पहले
आज से 50-60 साल पहले या 70-80 साल पहले इवन जो है ना लैंड फिलिंग का एक तरीका था। लैंड फिलिंग का मतलब होता है कि आप एक बहुत बड़ा खड्डा खोद लेते हैं और अपनी वेस्ट जो है सॉलिड वेस्ट डेली बेसिस पे आप वहां लाकर तो उसके अंदर दफन करते हैं
जी।
अब उसके अंदर भी कई किस्में हैं, सैनिटरी लैंडफिल है, बायोरिएक्टर लैंडफिल है जिसमें जो है ना गैस कलेक्शन करने का भी तरीका है। उसमें अगेन वही चीजें आ जाती हैं जो मैंने आपको छोटे लेवल पे बताई हैं। जब बड़े लेवल पे इकट्ठी हम वेस्ट रख देते हैं तो वो एक किस्म का बायोलॉजिकल बम बन जाता है
जी।
अगर उसे हम इंसुलेट नहीं करते हैं, मीन इन बिटवीन सॉयल और फजा के दरमियान में उसे हम मौसर तरीके से आइसोलेट नहीं करते हैं तो उसके एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स मौजूद हैं
जी।
मिसाल के तौर पर जिस खड्डे में आप ये जाकर इकट्ठी करेंगे, नीचे से अगर आपने लाइनिंग नहीं डाली है, लाइनर्स नहीं बनाए हैं, जियो टेक्सटाइल लाइनर्स होते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत 5 TS होते हैं
जी, उसके,
पहले
जी,
आप एक बिछाते हैं फिर मिट्टी डालते हैं फिर एक लाइनर डालते हैं फिर मिट्टी डालते हैं, इसी तरह 4-5 और फाइनल जो है क्ले लेयर 1 मीटर चौड़ाई होती है उसकी, 1 मीटर उसकी जो है ना वो करते हैं ताकि ये सारा जो इंतजाम किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि इसमें से जो पानी निकलना है, मसलन कल को जब बारिश आएगी और इतनी बड़ी वेस्ट का ढेर पड़ा होगा तो वो पानी जो है वो नीचे नहीं जाना चाहिए
जी जी। यानी इसको अगर मैं नटशेल में सामने लूं जो मकबूल भाई हमें बता रहे हैं तो वो ये है कि जनाब जिस वक्त कोई भी वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, एक जो क्वालिटी सिस्टम है, एक जो साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है वेस्ट को मैनेज करने का, वो ये है कि जो ही आपका वेस्ट जो है जो प्रोड्यूस हुआ वहां से लेकर के उसको जहां कहीं पे भी आपने दफन करना है वहां तक, पहली तो बात यह है कि बिल्कुल इन आइसोलेशन इसको होना चाहिए, यानी अपने जो इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट है उसको उसके साथ उसका कांटेक्ट अगर बिल्कुल एलिमिनेट नहीं किया जा सकता तो वो मिनिमाइज तरीके से जहां पे उसको डंप होना है वहां पहुंचे, पहली बात तो ये। उसके बाद जब आप उसको डंप करेंगे तो डंप करने के दौरान में भी जो साइंटिफिकली प्रूवन तरीके हैं कि आपने एक जो लेयर है वो आपने अपने वेस्ट की उसके ऊपर दूसरी लेयर उन खास केमिकल से तैयार करता उस मटेरियल की कि जो बेसिकली मेरे ख्याल में जो भी उससे खतरनाक चीज़ें वाबस्ता हैं जो वेस्ट है उससे उनसे बचाने के लिए है, और इस तरह से करके आप उसकी तह लगाते जाते हैं और उसके बाद में सबसे आखिर में जो आप एक तह लगाते हैं वो चिकनी चिकनी मिट्टी से 1 मीटर यानी गहराई तक उसको जो है उससे कवर कर देते हैं। तो इसमें जो चीज मकबूल भाई हमें बता रहे हैं कि जो सामने समझ आ रही है हमें वो ये है कि ऑब्वियसली सिंपल सी बात के जो वेस्ट है उसको इस तरह से हमें दफन करना है कि उसका जो रापता है बाकी के इन्वायरमेंट से बिल्कुल कट जाए, क्योंकि दोनों हालतों के अंदर के अगर बाहर की इन्वायरमेंट का कॉन्टैक्ट होता है वेस्ट के साथ या वेस्ट का बाहर की कॉन्टैक्ट होता है बाहर की इन्वायरमेंट से, दोनों हालतों में वो हमारे लिए खतरा है। मकबूल भाई अगर वो हमारे लिए खतरा है तो हमें ये बताइए कि अगर वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं की जाए तो उससे क्या क्या हो सकता है हमारे साथ, और फिर हम उसको डिटेल से बात करेंगे क्लाइमेट के हवाले से। तो पहले तो हमें ये बताइए कि वो कौन कौन से खतरे हैं कि जिनको हम मुकम्मल तौर पर खत्म करते हैं अगर हमने अपने वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज करके उसको मैनेज किया और उसको डिस्ट्रॉय किया।
ये मैं आपको आखिर में बताता हूँ, अभी तक और सिस्टम हम डिस्कस कर लेते हैं।
जी बताइए जरूर।
ये है मसलन जब वहां पर वेस्ट कलेक्ट हो गया, डंप हो गया उस लैंडफिल के अंदर, उस टेक्निकल खड्डे के अंदर, तो उससे क्या हो रहा है कि उसके अंदर एक बायोलॉजिकल रिएक्शन शुरू हो गया। जब से आपने डिस्पोज करके अपने डस्टबिन में रख दिया वहां से, उसका बायोलॉजिकल जो तरीका है, जो कुदरती बैक्टीरिया है, उसने उसको डिके करने का अमल शुरू कर दिया।
सही,
डिके का अमल करना शुरू कर दिया है तो उससे गैसेस निकलना शुरू हो गई।
सही,
प्लस बायोलॉजिकल जो एक रिएक्शन है, जहां पर हवा नहीं पहुंच रही है वहां पर जो है बैक्टीरिया पानी भी छोड़ते हैं, हीट भी छोड़ते हैं, गैसेस भी छोड़ते हैं।
सही,
तो वो काम उधर से शुरू हुआ हुआ है और आपने इकट्ठा करके तो एक जगह पे ला दिया है, तो वहां पर जो है मास रिएक्शन जो है वो शुरू हो चुका हुआ है।
जी,
उसमें जो है ना आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकल रही है, अमोनिया गैस निकल रही है, मीथेन गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, ये मेन गैसेस उसमें से एमिट होती है।
जी,
उसका दूसरा रिजल्ट ये है कि उसमें से पानी भी निकलते हैं।
जी,
ये पांच छह प्रोडक्ट्स हैं जो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैक्टीरिया जो है बायोलॉजिकल जो नेचुरल फैकल्टेटिव प्रोसेस है वो ये चीजें पैदा कर रहे हैं। मकसद ये होता है कि हमने इन सारी चीजों को अवॉइड करना है। आखिर में मैं आपको अपडेट करूंगा कि क्लाइमेट पर इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। अब नेक्स्ट जाना दूसरा सिस्टम ये है।
जी,
अब 50-60 साल पहले तो ये राइट था कि जी जमीन में दबा दें।
अच्छा,
उसके बाद ये हुआ कि जी जमीन में जब दबाते हैं तो इसकी गैसेस भी निकलती रहती हैं, वो जो मिट्टी ऊपर डालते हैं जब मुकम्मल भर जाता है उसे कैप कर देते हैं, पोस्ट लैंडफिल क्लोजर प्रोटोकॉल्स के तहत उसे बंद कर दिया है। उसका तरीकाकार है, उसे भरने का भी तरीकाकार है, उसे बंद करने का भी तरीकाकार है, और उसके बाद मेंटेन करने का भी तरीकाकार।
जी,
लेकिन इस सारे चीजों के बावजूद जब वो भर जाता है, हम बंद कर देते हैं, गैसेस फिर भी निकल रही हैं, वो फिशेस बना देती हैं सुराख बना के, तो वो गैस अपने अपना रास्ता बना लेते हैं, पानी भी अपना रास्ता बना लेते हैं।
अच्छा,
इस तरह पानी भी बाहर निकल रहा है, गैसेस भी निकल रही हैं, और जो अगर आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत, यूरोपियन लैंडफिल स्टैंडर्ड्स के तहत आपने लाइनर भी डाले हैं, इवन वो भी रप्चर हो जाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब आप एक जगह पर एक पॉइंट के ऊपर सरफेस सर्टन सरफेस पर एक यूनिट एरिया पर आपने रखते 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 तो 15-20 मीटर ऊंचे हो गए हुए हैं, तो एक स्क्वायर फुट या एक स्क्वायर इंच के ऊपर जो डेड लोड पड़ा हुआ है वो वक्त के साथ साथ पड़ता और वो नीचे लाइनर्स जो है उनको पंक्चर करता हुआ पानी फिर भी निकल जाता।
जी,
इस लिहाज से, और वो जहां पर आपने लैंडफिल बनाया होता है उसका 30 किलोमीटर का रेडियस जो है उसका पानी वो काम कर रहे,
उसके 30 किलोमीटर के रेडियस में। दोबारा से कहिएगा क्या कह रहे हैं आप, 30 किलोमीटर के रेडियस में?
मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ लैंडफिल होता है जब वो बंद हो जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ 20 years, वो ऑलमोस्ट हम डिजाइन करते हैं 20 years में उसमें भरना होता है उस दौरान भी, और जब बंद हो जाता है तो अनदर 5-7 years में जो है ना वो ये प्रोसेस जो है ना शुरू हो जाता है कि हमारे वो लाइनर्स वगैरह वो पंक्चर हो जाते हैं।
अच्छा,
हमारी जो वो जिन वॉल्स
मतलब जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए होते हैं वो क्लैप्स होना शुरू हो जाते हैं, उनकी एजिंग हो गई होती है।
हाँ, क्योंकि अंदर बड़े सीवियर किस्म के केमिकल्स जो है ना बन रहे होते हैं, लिक्विड भी और गैसेस भी, तो वो उनको क्रोड कर देती हैं, वो उसको जो है ना सारी चीजों को तोड़ देती हैं।
सही सही,
तो ये हो जाता है। अभी फाइंडिंग ये है कि लैंडफिल इज नॉट अ कंप्लीट एनवायरमेंटली फ्रेंडली सोल्यूशन।
जी,
मैं अभी नेक्स्ट सिस्टम पे चलता हूँ।
जी,
कि हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में जो सबसे वायबल सिस्टम है वो ये है। मसलन पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ, डेवलप कंट्रीज में उनके पास रिसोर्सेज इतने होते हैं कि वो सारा ले जाकर तो वो जाकर जला देते थे। दूसरा ये स्टेप हुआ था उसको जलाना। अभी आप इमेजिन करते हैं कि आप पाकिस्तान में ये सोच सकते हैं कि उसे जलाना जो है ये एक रिसोर्स है, म्यूनिसिपल वेस्ट जो है ये एक नेचुरल रिसोर्स है, और हमारे इसके अंदर बड़े बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बाद में मैं आपको बताऊंगा, आप बड़े हैरान होंगे कि हम एक तो जो है ना वो रिसोर्स जो है वो जला रहे हैं, दूसरा ये है कि जो जलाने पे हमारी एनर्जी लग रही है वो भी पैसा है, उसकी मशीनरी लगाने पे जो हमने इन्वेस्टमेंट की है वो इट इज़ अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। वो इंसिडेंट कर लेते थे, कुछ को दबा लेते थे, मतलब ये है ना जो उनकी हैज़र्डस वेस्ट होती थी खास तौर पर उसको जला लेते थे। लेकिन अब डेवलप्ड कंट्रीज में भी इवन वो बहुत महंगा पड़ रहा है
जी।
अब हम आ जाते हैं कि अभी जो पूरी दुनिया में जो रायज है इस वक्त, जो हवा चली हुई है इस वक्त, जो वर्ड ऑफ माउथ है वो ये है कि आप जीरो वेस्ट कंसेप्ट पे जाएं।
अच्छा।
जहां पर आपकी डेली जो वेस्ट है, मसलन आपके एक शहर से खानेवाल से जो है तकरीबन 120 टन वेस्ट डेली निकल रही है, देयर मस्ट बी ए सिस्टम, देयर मस्ट बी ए टेक्नोलॉजी वेयर आई कैन डिस्पोज ऑफ एनवायरमेंटली फ्रेंडली अंडर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, कि वो डेली जो है ना मैं उसको खत्म कर लूं
जी।
उसका तरीका ये है कि मीन सिंपल प्लांट्स भी हैं, हाईटेक प्लांट्स भी हैं, कि आपकी जो मिक्स वेस्ट होती है वो सबसे पहले वहां कलेक्ट होती है फैसिलिटी के ऊपर, उसे हम कहते हैं म्यूनिसिपल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी या रिसाइकलिंग फैसिलिटी। तो हम मैकेनिकली जो है उसे हम पहले जो उसके अंदर वेट मटेरियल होता है या जिसे हम ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं जो ऑलमोस्ट 50% होता है, उसको हम जो है ना उस पूरी स्टीम से, उस पूरी मिक्सचर से जो है वो ऑर्गेनिक या वेट जो है उसे अलग कर देते हैं, वो मशीनें उसे अलग कर देती हैं
जी।
बाकी आपका जो है वो मटेरियल है जो गल सड़ नहीं सकते हैं, लेकिन उसके अंदर रिसाइकलेबल मटेरियल है, कुछ लोहा भी है, कुछ एल्युमिनियम भी है, कुछ शीशा भी है, कोई मुख्तलिफ चीज़ें हैं, प्लस कुछ प्लास्टिक्स हैं, कुछ पेट बॉटल्स हैं, मीन शीशा भी रिसाइकल हो जाता है। तो उसको अभी तक मीन कोई मास्टर मशीनरी तो नहीं बनी है। बेहतर तरीका पूरी दुनिया में इस वक्त जो 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 कंसिडर किया जाता है वो ये है कि हैंड पिकिंग से, मैनुअली जो है ना लोग होते हैं जो बेल्ट के ऊपर वो आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट जो है वो ट्रेवल कर रही होती है और मुख्तलिफ किस्म के जो रिसाइकलेबल मटेरियल्स होते हैं वो मुख्तलिफ लोग उठा के तो साथ उन्होंने बड़े बड़े ड्रम्स रखे होते हैं उसके अंदर डालते रहते हैं और उसको जमा करते रहते हैं
जी।
ये चीज होगी कि हमने रिसाइकलेबल मटेरियल जहां तक हो सका हमने अलहदा कर लीजिए मैनुअली या किसी और तरीके से। बाकी जो आपका मटेरियल बचा है वो है नॉन रिसाइकलेबल, वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो गल सड़ नहीं सकता, जो रिसाइकल नहीं होता।
तो इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे डोमेस्टिकली हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं?
सॉरी,
ये जो ऐसी चीजें हैं कि जो डिग्रेड नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली नहीं हो सकती, ऐसी कौन सी आप चीजें आप हाईलाइट कर सकते हैं शिया, हमारी हमारी जिंदगी में जिस तरह से हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं हमारे डोमेस्टिक हाउस होल्ड में, कोई आइडेंटिफाई कीजिएगा ऐसे आइटम्स?
मसलन कुछ प्लास्टिक्स हैं जो रिसाइकल हो जाते हैं, कुछ प्लास्टिक्स ऐसे हैं, पांच किस्म के प्लास्टिक हैं, फाइव पॉलीप्रोपिलीन्स उन्हें हम कहते हैं, वो रिसाइकल हो जाते हैं, उसमें पेट बॉटल्स भी शामिल हैं वो भी रिसाइकल हो जाती हैं, शीशा भी रिसाइकल हो जाता है, अल्मोनियम भी रिसाइकल हो जाता है, नॉन फेरस जो मेटल्स हैं वो रिसाइकल नहीं होते हैं, मतलब कुछ लोहे ऐसे हैं जो दोबारा पिघल के दोबारा नहीं बन सकते, एक तो वो चीज़ हो वो थोड़ी होती है, लेकिन वो मेन चीज़ है हमारी प्लास्टिक्स में आती हैं कि जो दोबारा नहीं बन सकती हैं, वो काफ़ी पोर्शन होता है हमारे रिसाइकलेबल मटेरियल जो है वो तकरीबन 100 टन का जो 50 टन ऑर्गेनिक अलहदा हो गया है, तो बाकी जो 50 टन है उसमें से जो है तकरीबन 12-15% जो है वो रिसाइकलेबल मटेरियल है
जी।
बाकी जो हमारा बचा है तकरीबन 35 टन जो है वो मटेरियल है जो ना तो गल सकता है ना रिसाइकलेबल हो सकता है, लेकिन वो जल सकता है, दैट इज कंबस्टिबल मटेरियल
जी।
वो भी एक रिसोर्स है, मैं आपको बताता हूँ कि उससे क्या बनती है। अभी हम ये तीन हमारे मेन कंपोजिशन जो है वो मैंने आपको अलहदा करके दे दी, तो इसमें अब जो ऑर्गेनिक पार्ट है उसमें से जो है ना आपके पास ऑप्शन है, नंबर वन आप उससे बायोगैस बनाए, बायोगैस से बिजली बनाए
जी,
जो बाकी जो फजला बच जाता है उससे आप कंपोस्ट या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकते हैं, और मैं उससे पांच किस्म के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाता हूँ
जी,
उससे गैस बना। ये हो गया आप ऑर्गेनिक का 50% ऑफ द टोटल वेस्ट है ना, वो ये रिसोर्स हो गया जिसकी मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिससे गैस निकलेगा, जिससे 3-5 किस्म के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर निकलेंगे और ये एरिया खत्म हो गया। अब दूसरे एरिए की तरफ आते हैं कि जो 12 से 15 फीसद जो रिसाइकलेबल मटेरियल था वो हमने पिक कर लिया और उसको हमने चाहे धो लिया या जिस तरह भी है उसके टुकड़े करके उससे थोड़ा सा पिघला के उसका हमने दाना बना लिया, ये एरिया ख़त्म हो गया जी। तीसरा एरिया जो आपके पास 35% ऑफ द टोटल बच गए हैं वो कंबस्टिबल है, उसको आप जला के उससे पानी गर्म कर सकते हैं, स्टीम बना सकते हैं, स्टीम से इंजन चला सकते हैं, जो उसमें से धुआं निकलता है। अभी जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है जिसे हम गैसिफिकेशन कहते हैं, और गैसिफिकेशन में जो मॉडर्न पार्ट है वो ये है कि हम उसे प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के तहत उससे डीजल भी बना सकते हैं।
अच्छा,
डीजल जिसे,
अच्छा,
तो उससे बड़ा वैल्यूएबल चीज जो है ना बन सकती है एक टेक्नोलॉजी। इस वक्त तक ये भी बन चुकी है, अमेरिका में कुछ लोगों ने उसे डिवेलप की है कि एक टन से एक मेगावाट बिजली पैदा होती है।
एक टन वेस्ट से
एक मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। ये टोटल एक टन की बात है अगर आप अलहदा ना करें तो, इन प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के तहत।
अच्छा, और ये टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंट ना हो सके, वजह हमारी ये हो सकती है पॉसिबली हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन के हम ये चीज नहीं कर पा रहे हैं।
बिल्कुल, ये इसका जो है ये काफी कॉस्टली है, और इसके मसलन एक मेगावाट बिजली बनाने पर $5 million जो है ना वो कॉस्ट मैंने उनसे पता किया है, क्योंकि इस वक्त मैं मेरे अंडर कंसिडरेशन जो है ना 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैंने इंडिविजुअल मीन फैक्ट्रीज को बिजली बना के देनी है वेस्ट से, या कुछ लोकेलिटीज हैं उनके हैं मेरे पास जो है ना इंक्वायरीज हैं कि हमें बिजली बना के दें, कुछ एग्रीकल्चर वेस्ट से हैं कि वो हमें ट्यूबवेल चला के दे।
तो ये जो
चीजें हैं
जी, तो ये जो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी है या मेथड है या प्रोसेस है ये हमारे लिए इतना मौजू नहीं है, आप समझते हैं?
मीन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मौजू नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है, एक दिन आ जाएगा या हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम शायद हम कभी एस्टेब्लिश कर लें
जी। तो अगली किस्म बताइएगा आप हमें
जी। ये एक तो ये हो गया कि हम जनरल तरीके से ये तो कर सकते हैं, हमने पाकिस्तान के अंदर के ये टेक्नोलॉजी सारी मुकम्मल कर सकते हैं जिसमें हमने एक चीज पे गैसेस भी निकालनी, कंपोस्ट भी बना लिए, फर्टिलाइजर भी बना लिए, रिसाइकल भी निकाल लिया, और उससे हम सिंपल एक प्लांट बनाकर उसको कंट्रोल एनवायरमेंट में हमने उसे जलाकर उससे पानी गर्म करके तो स्टीम भी ले ली, और उससे मीन स्टीम से इंजन चला के बिजली पैदा कर ली, और गर्म पानी को भी इस्तेमाल कर लिया, या डिस्टिल्ड वाटर है पीने के भी इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि हाई टेम्परेचर पे मीन 100 degrees centigrade पे वो बॉयल हुआ होता है, और आपको ये पता है कि जब बॉयल होता है या स्टीम जो है उसको कंडेंस करते हैं वो उसका पानी बनता है, तो वो एक किस्म की डिस्टिलेशन उसकी हो चुकी होती है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज नहीं होती है, वो मिनरल वाटर के बराबर होते हैं, तो वो भी एक ये पांचवी प्रोडक्ट जो है ना हमने इस तरीके से ये 5 प्रोडक्ट हासिल किए हैं, और हमने 3 किस्म की जो है 2 किस्म की जो है हमने बिजलियां इसमें से पैदा कर दी है। नटशेल आपका एक मीन एक स्क्रैप भी जो है ना वो नहीं बचा है जो आप लैंडफिल करेंगे, हाँ बाकी सिर्फ यही रह जाता है कि जो जहां आप जलाएंगे उसकी ऐश थोड़ी सी निकलेगी, लेकिन वो कोई इतनी ज्यादा जगह नहीं लेगी कि आप ये कहें, उसको हम जो है ना नेग्लिजिबल कहते हैं, इस लिहाज से हम उसे जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं।
सही,
ये एक मेन चीज है जो आम जगहों पर अभी हो रही है और लोग जा रहे हैं,
और बात सिर्फ वही है सामेईन मकबूल भाई की बातों को, अगर टेक्नोलॉजी की बात है, अब बात आती है हमारी कि प्रैक्टिकली इसमें हमारा क्या रोल होना चाहिए, कि इस तरह के एक आइडियल सिस्टम हमारे यहाँ भी हो कि जिसमें हम अपने ही प्रोड्यूस्ड वेस्ट को रीयूज करें अपनी ही बेहतरी के लिए। ये कंप्लीट एक साइकिल है, और इसमें से अगर एक भी कंपोनेंट अपनी जगह पे काम नहीं करेगा तो ऑब्वियसली इट वुड नॉट वर्क। फॉर एग्जांपल मैं इसको बड़े कमर्शियली सोचता हूं इसको, कि अगर हमारे यहाँ ऐसे कमर्शियल सेटअप्स हैं कि जो वेस्ट को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि जिसको रीयूज करें उस वेस्ट को, और उससे जो पॉजिटिव साइड है, यानी जो पांच बातें हमें बताई मकबूल भाई ने कि वो चीजें हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उससे उस वे से प्रोड्यूस करें, तो उस इंडस्ट्री को प्रॉस्पर होने में या फैलने में या उसको ज्यादा लोगों की मदद करने में जो हमारा रोल है वो ये है कि हम अपने वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज करें एज इंडिविजुअल्स। एंड ऑब्वियसली बात ये भी आती है कि हमारी हुकूमत को भी जो इकदाम करने चाहिए कि जाहिर है कि अब आप यू कैनॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कम्युनिटी मेंबर कि जी आप बैग उठा करके 10 मील परे जा करके फेंक के आएंगे, रोज के लिए करने की किसी में टाइम इतना नहीं होता। और जो टैक्सेस के हवाले से हमारी हुकूमतें जो हैं हमसे वसूल करती हैं उसका जो इस्तेमाल है वो इसी तरह की जो चीज़ें हैं उस पर हुकूमत को करना होता है, यानी कि आपको प्रॉपर वेस्ट कलेक्शन और फिर वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटीज़ आपकी कम्युनिटीज़ को अक्रॉस द कंट्री अवेलेबल हों और सबके लिए हों। अब ठीक है, हमारा मुल्क इतना अमीर नहीं है, हम गरीब भी नहीं हैं, मतवसत हैं, उसके अंदर हम कुछ शहरों में तो कर सकते हैं, तो हर एक को एक अपना रोल प्ले करना है। मगर भाई हमारा अब प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और इसमें मैं चाहूँगा कि वी शुड कंक्लूड ऑन द साइकिल कि जिसमें हमने वेस्ट प्रोड्यूस किया, वेस्ट को कलेक्ट किया, वेस्ट को मैनेज किया, फिर हमने उसको रीयूज करने का भी तरीका जो है उसको हमने जाना। अब इसको कंक्लूड कीजिएगा और फिर हमें ये बताइएगा कि वेस्ट की वजह से कि जो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रहा उसकी वजह से क्लाइमेट पे जो चेंज आ रही है वो क्या है, नंबर वन। और नंबर टू, हमें अगेन ऑब्वियसली वन थिंग इज फॉर श्योर कि अगर हम प्रॉपरली इसको अपने वेस्ट को मैनेज करें, कलेक्ट करें, मैनेज करें, तो एक तो वो हो गया। क्या कोई और चीजें भी हैं जो हमारी कम्युनिटी को ध्यान में रखनी चाहिए अपने वेस्ट के हवाले से कि जो डायरेक्टली हमारी क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर रही हैं? तो पहला क्वेश्चन ये कि वेस्ट का क्लाइमेट चेंज से क्या ताल्लुक है और उस पर क्लाइमेट के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या है, ये बताइएगा हमें।
अगर आप इस वेस्ट को ऐसी सरफेस जमीन की सतह के ऊपर रख देते हैं तो मैंने आपको पहले अर्ज किया कि इसके अंदर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है
जी,
इसकी बायोडिग्रेडेशन या डीके या फॉर्मेंटेशन शुरू हो जाती है और उसका जो मीन आउटपुट है वो मैंने आपको पांच किस्म की गैसेस बताई
जी,
और एक किस्म का जो है जो उसमें से जहरीला पानी निकलता है, मतलब को बारिश आ जाती है या उस प्रोसेस से अगर हवा की गैर मौजूदगी में हो उसे हम एनारोबिक प्रोसेस कहते हैं, और दूसरा ये होता है कि जिसमें हवा का हम अवेलेबिलिटी जो है ना वो एश्योर करते हैं तो उसको हम एरोबिक सिस्टम कहते हैं। बहरहाल आम तौर पर जो है वो एनारोबिक होता है, उसमें ऑक्सीजन पूरी नहीं जा रही होती है, उसकी बड़ी डिमांड होती है बैक्टीरिया की कि उन्हें ऑक्सीजन, एलिमेंटल ऑक्सीजन जो है वो मुहैया की जाए, दरअसल वो नहीं हो रही होती है, तो वो प्रोसेस एनारोबिक चल रहा होता है, तो उससे पानी निकलता है और पांच किस्म की गैसेस निकलती हैं। जो गैसेस निकलती हैं वो हमारी जो क्लाइमेट है उसको अल्टर करती हैं और हमारी ओजोन जो लेयर है ऊपर बनी हुई उसको जाकर डिस्टर्ब करती है। ये हो गया ग्राउंड वाटर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है कि हालत ये है कि हमारे जो शहरों का ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो थ्रेशोल्ड लेवल जो है, अलाउएबल लेवल जो है उससे कहीं ज्यादा मुजर हो चुका हुआ।
इन अदर टर्म्स इट इज
बड़े
इन
जो शहर है
जी जी, इन टर्म इन अदर वर्ड्स पोल्यूटेड है हमारा जो पानी है पीने का या जो ग्राउंड वाटर है।
हाँ वो हाँ ब्राउन वाटर मुजर से खासतौर पर, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि जो आर्सेनिक के ये एक हैवी मेटल है, पॉइजन है एक किस्म की, इसके जो थ्रेशोल्ड लेवल है आपके पूरे लाहौर में जो है ना मेजॉरिटी ऑफ एरियाज में जो है ना आर्सेनिक आप ज्यादा जो है पीते हैं वो आपके ग्राउंड में मौजूद है, वाटर में मौजूद है जिसको आप रीपम्प करके आप पानी पी रहे हैं। उन चीजों पर स्टेप बाय स्टेप हम एफ्लुएंट पे नेक्स्ट टाइम पे आएंगे, गैसेस पे भी आएंगे, मैं आपको मोर डिटेल में बताऊंगा। तो ये एक एक्चुअली बहुत बड़ा मसला है पूरी दुनिया में, ये बहुत बड़ा मसला है, लेकिन वो लोग किसी ना किसी तरीके से जो है इसे चेक कर लेते हैं, लेकिन हम लोग किसी लेवल पे नहीं पहुंच रहे हैं और हम अभी तक काफी बातें करते जा रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं है।
सही, तो इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मैं समझा हूं वो ये कि जो भी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वेस्ट से अगर उसको प्रॉपरली हमने मैनेज नहीं किया वो हमारे एटमॉस्फेयर में जा रही हैं और जो हमारी ओजोन की जो एक लेयर है उसको वो डिस्टर्ब कर रही हैं। मुझे ये बताइए कि ओजोन की लेयर करती क्या है, पहली बात तो ये, और फिर उसको डिस्टर्ब किस तरह से कर रही हैं, उसके डिस्टर्ब होने से हो क्या रहा है?
ओजोन ने जो है ना हमारी जो जो एक फजा है ये एक दो तीन किलोमीटर के बाद जो है ना ऊपर एक बनी हुई है जिसने हमें जो है सूरज और हमारी जो जमीन है उसके दरमियान में एक वर्चुअल सी लेयर बनाई है। उस लेयर की वजह से जब वो मेंटेन है उसकी थिकनेस है काफ़ी सारी, अभी सही उसकी डायमेंशन का मुझे नहीं पता है। अब उसमें ये है कि जो सूरज से जो शुआएं आ रही हैं उनके साथ अल्ट्रा वायलेट रेज है
जी।
उसकी बड़ी हाई हीट है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है ना रेज मौजूद हैं जो चीज़ों को ख़राब कर देती हैं, जो उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स को डिस्टर्ब करती हैं। नंबर वन तो ये है कि जो है ना वो उसको जो है डिस्टर्ब करते हैं
जी।
फिर वो रेज जो है वो हमारी ऑक्सीजन का जो साइकिल है उसको डिस्टर्ब करते हैं। ये दो मेन रीजन हैं, छोटी छोटी और भी हैं लेकिन ये दो मेन रीजन हैं कि जिससे हमारा जो लेयर है वो ओजोन लेयर जहाँ से वो उसके होल्स बन गए हुए हैं या किसी जगह पे वो उसके बहुत बड़े पैचेस हैं जहाँ पर ओजोन अवेलेबल ही नहीं है, तो वहाँ पर से जो है ना अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो हमारी फिजा में शामिल होती हैं जिससे हमारा एक टेम्परेचर जो है ना, जनरली आपने सुना होगा कि हमारा जो है ना एक ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही
है। जी बिल्कुल, उसी को मैं एड्रेस कर रहे हैं हम लोग क्लाइमेट चेंज के हवाले में।
हाँ ये वही ये मुझे बनती है ग्लोबल वार्मिंग की का मुझे बन रही है। प्लस ये जो गैसेस हैं मैं आपको बताऊं कि ओवरऑल ये गैसेस जो है आपके ऑक्सीजन कंटेंट्स को न्यूट्रलाइज करती हैं और आपका जनरली आपके जो ऑक्सीजन कंटेंट है दैट इज बीन जो स्टैंडर्ड है वो 21.33% जो है वो आपकी जो है ना ऑक्सीजन है, और आपकी ऑक्सीजन हर जगह पर इतनी नहीं है, उसमें दूसरी इम्प्योरिटीज दूसरी गैसेस जो है उनका ज़्यादा हिस्सा हो गया जिसकी वजह से हमें क्लियर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिसे हम कहते हैं कि जी एयर पोल्यूशन है यहाँ
जी।
दैट इज़ ए पार्ट ड्यू टू द एनी चीज़। मैं आपको एक नटशेल बता देता हूँ कि कोई भी सरफेस पे कोई चीज़ जानदार है, चाहे वो नबातात हैं चाहे वो जमादात हैं चाहे वो एनिमल हैं, वो सारे जो है वो गैसेज मुख्तलिफ किस्म की छोड़ रहे हैं। जैसे जनरली आपने देखा होगा कि जो 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 एनिमल्स हैं उसमें इंसान भी आते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं।
सही।
जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसी तरह जो वेस्ट मटेरियल है वो जहां पर भी पड़ा है सरफेस ऑफ द ग्राउंड तो उसके अंदर जो है वो एक बायोलॉजिकल जो तरीका चल रहा है उसके तहत वो भी गैसेस निकाल रहे हैं, हम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। मीन किसी जगह पे थोड़ा गंद पड़ा हुआ है, किसी जगह पे ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो वो अपनी उसके मुताबिक उसका भी मैं आपको रूल ऑफ थंब बता देता हूँ कि एक टन वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट नामियाती प्योर ऑर्गेनिक वेस्ट जो है अगर कहीं पड़ी हो तो वो उसको पूरा न्यूट्रलाइज होने के दौरान जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन डिपेंड करता है उसके अंदर मॉइस्चर कब आई, हो सकता है वो सूखी है रुक गई होगी तो उसका ड्यूरेशन नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो कंप्लीट उसका स्टेबलाइज करना मकसद है कि उसके अंदर से कार्बन कंटेंट्स कंज्यूम हो गए और वो डिकम्पोज हो गई है बायोलॉजिकली, तो वो पूरे अपने प्रोसेस के दौरान में 6 टन गैस निकालेगी।
अच्छा,
समझे ना?
एक टन जो वेस्ट है वो 6 टन मुजरे सेहत जो गैसेस है वो प्रोड्यूस करता है,
करते हैं।
ओह माय गॉड,
वो चाहे वहां साल पड़ी रही है चाहे 3 साल पड़ी रही है, मतलब ये है ना डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस थी वो कैसी थी। अगर तो वो उसके अंदर मॉइस्चर मौजूद था जिसके ऊपर बैक्टीरिया काम करते हैं तो फिर जो है वो 5-6 महीने में वो सारी स्टेबलाइज हो जाती है और उस वेस्ट के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर जो कार्बन मौजूद है, कार्बन और नाइट्रोजन ने मिलकर जो रिएक्शन किया है बैक्टीरिया के जरिए, तो उसका कार्बन सारा कंज्यूम हो गया और उसकी गैसेस बन गई हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बनी है, अमोनिया बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, मीथेन बनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है, सल्फर बनी है, ये सारी चीजें जो है ये बन के तो वो ऐसा ऐसा हवा में शामिल होती रही है। सो दीज ऑल आर द प्रैक्टिसेस इन इन डिसगाइज दे आर कल्प्रिट फॉर एनवायरमेंटल चेंज, और इन चीज़ों को जो है हमें वो चेक करना होगा, इन चीज़ों का सलूशन निकालना होगा। सलूशन मौजूद है, लेकिन हमारे मुल्क में आपको थोड़ा सा हाईलाइट करूँ कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में उनकी काफ़ी कोशिशें हैं, वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड बैंक ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, UNO ने, ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, इन लोगों ने जो है ना इनको एक प्रोटोकॉल दिया है कि आप जो है, क्योंकि एक बड़ी सिटी है लाहौर शहर जो है, उससे 6,000 से 9,000 टन डेली वेस्ट निकलता है, तो उसका आप इंतज़ाम करें। अब अलमिया ये है कि आज 4 साल 5 साल गुजर गए हुए हैं, उन्होंने आज तक उसकी कोई टेक्नोलॉजी प्लान नहीं कर सके,
सही,
उसकी टेक्नोलॉजी कोई डिज़ाइन नहीं कर सके हैं। उसकी मैं आपको वजह बता रहा हूँ, मैं ये एक है तो थोड़ा सा पोलिटिसाइज मैटर, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा टच के तौर पर बताना चाहूँगा, और मैं ख़ासतौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी ये इनडायरेक्टली मैसेज जो है वो मैं ड्रॉप करना चाहूँगा कि जो इदारा बने लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कंपनी बनी है, उसका MD मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ बुनियादी तौर पर, जो इंटरव्यू हुए थे टोटल हम 6 कैंडिडेट थे, और उनमें से मैं एक बार बंदा था जिसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस था, एजुकेशन थी और एक्सपोजर था इंटरनेशनल। शॉर्ट लिस्ट मुझे तकरीबन किया गया था, लेकिन उन्होंने एक डिप्टी कमिश्नर को MD बना के बिठा दिया।
अच्छा।
अब डिप्टी कमिश्नर को ABC नहीं आती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, वो इस पंजाब में सारे करते रहते हैं, वो वज़ीर आला के पास है, उनके नज़दीक है, उन लोगों ने अपने बंदे बना लिए हुए हैं, और अब वो DCs हैं, वो DC लेवल के बंदे हैं। अब उनको क्या पता है कि जो है ना ये वेस्ट मैनेजमेंट कैसे की जाती है, ठीक है, वो कलेक्ट करवा रहे हैं।
सही सही, आप जो बात कह रहे हैं मकबूल भाई, सही कह रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि इन नटशल आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर उन लोगों को गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए कि जो इस एरिया में माहिर हों, ताकि वो राइट जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको वो अडॉप्ट कर सकें, या उनको उनको हासिल करें वो, रादर देन के बेस्ड ऑन नो एंड नॉट एनफ यू नो नॉलेज अबाउट दी टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। कोई भी जो इंडस्ट्री है जैसे वेस्ट मैनेजमेंट की है, तो वो थोड़ा सा जो उनसा है वो उसमें डिसीजन भी गलत लिया जा सकता है। सामिन, इससे पहले कि हमारे 3 मिनट प्रोग्राम के रह गए हैं, और हमने एक्चुअली इस पूरे चीज़ को कवर किया मगुल भाई के साथ कि वेस्ट के प्रोडक्शन से लेकर के कलेक्शन से लेकर के फिर उसकी मैनेजमेंट और उसके वेरियस तरीक़ाकार, हमने ये चीज़ भी उनसे जानी आज के अगर हम ये प्रॉपरली वेस्ट जो है इसको मैनेज नहीं करते तो हम अपने लिए क्या नुकसानात, अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए क्या नुकसानात कर रहे हैं, और उसका हमारी क्लाइमेट पे, हमारी ग्लोबल वार्मिंग पे, यानी हमारे टेम्परेचर्स पे, बदलते हुए मौसमों पे उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। और कंट्रीब्यूशन की उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी आपके सामने, आपने सुना कि 1 टन जो वेस्ट है उससे कितने टन हम जो है वो मुज़िर सेहत और हमारी इन्वायरमेंट के लिए जो ख़तरनाक हैं वो गैसेस हम प्रोड्यूस करते हैं, तो हमने उसको अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो वी आर नॉट रियली डूइंग द राइट थिंग। और उसके साथ में सुभान अल्लाह, मैं कुदरत की देख रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए पूरे का पूरा एक रिसाइकलिंग का एक सिस्टम रखा हुआ है, बदकिस्मती से अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करते और उसको अपनाते नहीं, तो हम सीधी बात है कि अपने लिए खुद ही गड़ा खोद रहे हैं। यानी सिंपल इज दैट तहारत सफाई निस्फ अमान है, और सफाई को अगर अंडरलाइन कीजिए और उसको सोचिए कि सफाई के जुमरे में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो एक उसमें डेफिनेटली आती है वेस्ट मैनेजमेंट, कि हमने क्या अपने वेस्ट को मैनेज किया सही तरीके से, नहीं किया तो निस्फ अमान जो हमारा है उसको हम पॉसिबली लूज कर रहे हैं। तो वार्निंग क्या थी कि भाई इसको सही तरीके से मैनेज करोगे तो ये पहिया चलता रहेगा, ये दुनिया इसी तरह चलती रहेगी, नहीं करोगे तो उसी दुनिया को अपने लिए तुम जो है वो आई वुड से अजाब बना लोगे, दैट वुड बी द राइट वर्ड, नहीं मैं जानता, लेकिन सामईन दरख्वास्त है आपसे कि अपने वेस्ट को मैनेज कीजिए, अपनी जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, एहतजाज कीजिए आप कि आपके जो राइट्स हैं, बेसिक सिविक राइट है ये आपका, क्योंकि यू पे द टैक्स, यू पे लॉट्स ऑफ मनी टू दिस गवर्नमेंट, तो उस हवाले से उनको कुछ करना है और वो कर भी रहे हैं। ये भी अपनी जगह एक मसला है कि हमारे मईशी हालात ऐसे नहीं हैं, लेकिन मईशत तो तब बदलेगी ना जब हम भी ज़्यादा काम करेंगे, गवर्नमेंट तो अकेले कुछ नहीं कर सकती, तो हमें अपना रोल प्ले करना है, गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना है, और इंशाल्लाह वन डे डेफिनेटली विल बी एबल टू मेक अ डिफरेंस। मगर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमारे साथ वक्त गुजारा। इंशाल्लाह आपसे इस मौजू पे मैं दोबारा भी बात करूंगा, लेकिन जाने से पहले मैं चाहूंगा कि कम्युनिटी के लिए एक जनरल कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो माइक इज योर्स।
मैं यही कहना चाहूंगा कि हर एक इंसान जो कुछ अपनी बेस पैदा करता है वही जिम्मेदार है, और उसे अपनी बेस को अच्छे तरीके से उसे डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। ये एक मेन मैसेज है जो अगर हम कर लें हम जिम्मेदारी तरीके से, तो हम काफी हद तक इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं,
इस पे कंट्रोल भी कर सकते हैं सामीन, और उसके साथ हमारा एनर्जी का जो इशू है वो भी रिजॉल्व हो सकता है। रिमेंबर मेरे दो एपिसोड पहले की जो थी उसमें ये बात हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस की थी कि मौसम जिस तरह से चेंज हो रहे हैं हमें पानी का भी इशू आएगा, और उस पानी के हवाले से भी हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी इंशाल्लाह किसी गेस्ट को अपने यहाँ मदऊ करेंगे जो हमें ये बताएंगे कि पानी के साथ क्या होने वाला है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और अगर वो सिचुएशन आ रही है सामीन तो वी आर नॉट इडियट्स, we have to do something, and what we got to do is basically ke is cheez ko promote kijiye ki apne waste ko manage kijiye, aur uske baad make sure kijiye ki usko scientific tarike se manage kiya jaye taaki it should produce you alternative energies, us energy se chalenge hamare chule, us energy se jalengi hamari lightein. To samein aakhir mein phir ek dafa kahunga safai aapka nisul iman hai, thank you very much. एक मिलकर के नारा लगाते हैं मकबूल भाई के साथ, लेकिन जाने से पहले कोई भी तजावीज कमेंट्स यू गॉट गपशप एट radio@contactpakistan.com। हमारे आज के प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं सेमेंटिक इंटरनेशनल, और वो देते हैं आपको बहुत से इनामात एक क्विज में कि जो हम अपनी फेसबुक की वॉल पे और कॉन्टैक्ट पाकिस्तान के मेंबर्स के दरमियान में वो लिंक शेयर करते हैं, जहां पे एक छोटा सा सवाल होता है आज के प्रोग्राम के हवाले से, और उसमें से अगर आप सही जवाब देते हैं तो यू कुड बी वन ऑफ द थ्री लकी विनर्स ऑफ नॉर्टन एंटीवायरस एक साल के लीगल लाइसेंस के साथ, के जिसकी पाकिस्तान में मालियत है 5,000 रुपए। तो सामीन इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, जाने से पहले मुगुल भाई एक नारा लगेगा हमारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।